शांति हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, जो काम करना है वो बहुत बड़ा है, सारे विश्व को संदेश देना है, और इसलिए साथियों तैयार हो जाओ, अर्पित कर दो तन मन धन, सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा, क्योंकि मांग है बलिदान की। अगर देश के काम ना आए, अगर इस यज्ञ के काम ना आए, अगर विश्व के काम ना आए, तो ये जीवन कैसा है? बेकार, व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ ही जन्मे और व्यर्थ ही जिए और व्यर्थ ही मरे। ये जीवन किस लिए है? सेवार्थ। ये जीवन किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ। ये जीवन किस लिए है? इस यज्ञ अर्थ। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, बंसी फेंको और उठा लो। बहुत बंसियां बजा दी, अब क्या करो? तलवार हाथ में उठाओ, ज्ञान की तलवार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। जो माथा उठा है उसके सम्मुख हार ठहर नहीं पाएगी। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जय जयकार। तो इस जीवन को सेवार्थ लगाना है। कल जो अव्यक्त वाणी चली थी सुबह संडे की, जो कि रिवाइज्ड मुरली थी 15/3/85 की, उसमें पार्टियों से मुलाकात थी और दादी विदाई ले रही थी, बाबा विदाई ले रहे थे, दादी से बात कर रहे थे, जानकी दादी से। ये जो दूसरा भाग है मुरली का, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, और शाम को जो मुख्य मुरली है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या कहा विदेशी भाई बहनों से बाबा ने? क्या कहा? कल ही मुरली चली है सुबह सुबह, क्या कहा? सेवा पर जाना अर्थात, सेवा पर जाना अर्थात बाप को साथ रखना। सेवा करना अर्थात बाबा साथ है। कितनी अच्छी बात है। अलग से कुछ नहीं कहा कि अलग से योग करो अलग से वो करो, परंतु सेवा कर रहे हो बाबा के साथ ही हो तुम सेवा करते समय। ऐसा समझो कि करण करावन हार करा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। जो इस भाव से सेवा करते हैं उन्हें क्या मिल जाती है, सफलता। वो सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। सेवा सफलता जन सिद्ध अधिकार है। सेवा करने से क्या मिल जाता है, पुण्य आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनने का अनुभव होता है और जब सेवा करते हो तो क्या मिल जाती है, दूसरी आत्माओं की कौन सी लिफ्ट, लिफ्ट कहो या गिफ्ट कहो, दुआओं की। बाबा ने कहा भी समय आएगा। कौन सा समय आएगा, भविष्यवाणी की है मुरली में एक, कौन सी कौन सी भविष्यवाणी की, एक है, एक ही है, ये समय आएगा। और जब ये समय होगा तब फिर समाप्ति होगी। ये जब समय आएगा तब फिर समाप्ति होगी। तब तक सेवाएं करनी है और बहुत सेवाएं करनी है और अभी बहुत सारा काम बाकी है। इसके लिए अब सोने का समय नहीं। दादी जानकी से पूछा किस में व्यस्त रहती हो, किस में बिजी रहती हो, याद और सेवा में बिजी रहती हो, और कोई फुर्सत है, और कोई बात बुद्धि में है। ऑटोमेटिकली केवल एक ही बात बुद्धि में आती है, बाप और सेवा। और जब ये अवस्था है, इसीलिए कहा जाता है सीखी हुई सिखा रहे हो, जो कुछ सीखा है वो दूसरों को सिखा रहे हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। लहराती हो निरंतर, नहाती रहती हो किसमें, खुशियों के सागर में, प्राप्तियों के सागर में। और जिसको नहाना नहीं आता है उसको क्या किया जाता है, उसको पकड़ के नहलाया जाता है। तो तुम भी क्या करती हो, यही करती हो ना, बाबा पूछ रहे दादी से। तो सेवा इस विश्वविद्यालय का चौथा सब्जेक्ट है, चौथा विषय। और यदि ये विषय ना हो तो शायद मन भटकने लगेगा। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार फिर इमर्ज होंगे और भटकाएंगे। इसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हरेक को अपने आप को सेवा के योग्य बनाना है। हमारी दिनचर्या में एक भी पल ऐसा ना हो जिससे हम कोई सेवा नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ हमसे होता रहे। बाबा ने कहा है यदि तुम्हारे पास कोई आए, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बिना तुमसे गिफ्ट लिए कोई वापस न जाए। तुम अखंड महादानी हो, तुम्हें अखंड महादानी बनना है। अगर तुम्हारे पास कोई आता है बिना कुछ लिए वापस न जाए। एक दूसरी अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा यदि कोई अपकारी भी तुम्हारे पास आ जाए, यदि कोई निंदा करने वाला भी तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करो, अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा। बाबा के शब्द देखो क्या है, अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, स्थिति का वायुमंडल, अपने स्थिति के वायुमंडल से उसके वृत्ति के वाइब्रेशंस चेंज करो। स्थिति के वायुमंडल से उसके वृत्ति के वाइब्रेशंस चेंज करो। तो सारी दिन रात बस यही एक लगन रहे, सेवा 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 सेवा। हमसे निरंतर सेवा होती रहे। मनसा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्मणा, कर्मणा नहीं तो संबंध संपर्क। जो भी संपर्क में आए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाए, कुछ ना कुछ ले जाए। यदि हम कुछ बोल भी नहीं रहे पर कुछ धारणाएं ले जाए, कर्मों से गुणों को ले जाए, फिर वो कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी विरोधी क्यों ना हो। सबने सुना होगा जब ब्रह्मा बाबा यहां थे तो वॉकिंग करते थे और यहां पर एक सन्यासी की झोपड़ी थी और वो सन्यासी क्या करता था, बहुत गालियां देता था, बहुत गालियां, क्योंकि उसके सारे शिष्य इधर आने लगे थे, बिजनेस बंद हो रहा था, तो बहुत गालियां देता था, बहुत गालियां देता था, रोज गालियां देता था। बाबा कुछ भी नहीं करते थे, कहते थे, जगदीश भाई बाबा के साथ ही घूमते थे वॉकिंग, कई बार बाबा जगदीश भाई को ले जाते थे, तो जगदीश भाई कहते थे कि बाबा आप अगर कहो तो इसको ठीक कर दे, तो बाबा क्या कहते थे, ना, वो भी बाप का बच्चा है। और फिर बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, दूसरे दिन वो सन्यासी आया और इतना फूट फूट के रोने लगा, बाबा की देह पड़ी थी और वो चरण पकड़ के रोने लगा कि मैंने जीवन भर आपकी ग्लानी की। पूरे उसके आंसू बाबा के पैरों पर भीग गए, पैर, इतना फूट फूट के रोने लगा वो कि मैंने जीवन भर आपकी ग्लानी की, आपने कभी भी एक उत्तर अपशब्द नहीं बोला मुझे। तो चाहे कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी उपकारी अपकार करने वाली हो, या कितने ही मार्ग में विघ्न डालने वाली आत्मा हो, ऐसी भी आत्मा सामने आ जाए तो क्या करनी है, उसकी भी सेवा करनी है, उसकी भी सेवा करनी है, सभी के प्रति कल्याण का भाव। तो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात, विदेशी बच्चों से मुलाकात और दादी, ये दो बातें हैं। क्या कहा, सेवा करो, और सेवा करते क्या अनुभव करो कि बाबा साथ है। अपने अपने कर्म क्षेत्र को देखना है यहीं बैठे बैठे, चाहे सेंटर, चाहे घर, कोई डिपार्टमेंट, जब हम सेवा कर रहे हैं क्या बाबा साथ है। सेवा पर जाना अर्थात बाप साथ साथ जाना, ऊपर से करण करावन हार करा रहा है, मैं कर रहा हूं, ये खेल हो रहा है नीचे, ये अनुभव। सेवा में सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सेवा में पुण्यात्मा बनने का अनुभव, और सेवा में असंख्य आत्माओं की क्या लेनी है, दुआओं की लिफ्ट मिलती है। और बाबा ने कहा अभी वो समय आएगा जब सब लोग क्या कहेंगे, एक ही एक है, एक ही है, तब समाप्ति होगी, तब तक समाप्ति नहीं होगी, तब तक सेवाएं करते रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या, हो जाओ साथियों तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अपने तन मन धन को अर्पित कर दो। समर्पण बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन साधना है, एक सेवक के कर्तव्य सबसे कठिन होते हैं। जैसे एक राजा भोजन कर रहा था और उसका सेवक उसे भोजन परोस रहा था, भोजन परोसते परोसते थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर गिर गई, और जैसी राजा के कपड़ों पर सब्जी गिरी, राजा एकदम क्रोध से लाल हो गया, आंखें एकदम उसकी लाल हो गई, और वो जो बेचारा था सेवक, उसने जैसे ही देखा कि राजा एकदम क्रोधित है और आंखें लाल हो गई, उसने वो जितनी सब्जी थी वो सारी की सारी सब्जी राजा के कपड़ों पर डाल दी। राजा त्योरिया उठ गई, अब तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने कहा राजा ने तूने ये दुस्साहस कैसे किया, पहले तो एक चम्मच सब्जी गिरी थी कपड़ों पर, हम पूरी की पूरी सब्जी डाल दी। वो सेवक कहता है महाराज जब मैंने थोड़ी सब्जी डाली और देखा कि आप इतने क्रोधित हैं, मैंने समझ लिया अब मेरा बचना मुश्किल है, परंतु आप आपकी इससे बदनामी हो सकती कि सेवक की छोटी सी गलती के वजह से राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, इसलिए इसलिए क्या मैंने सारी की सारी सब्जी डाल दी ताकि आपकी बदनामी ना हो। राजा जैसे ही सेवक के ये शब्द सुनता है, एकदम उसको एक गुप्त संदेश उसमें दिखाई देता है। उसको दिखाई देता है ये सेवक कितना समर्पित है, कैसा समर्पण भाव है इसमें। और चाहे सेवक हो या कोई भी व्यक्ति हो संसार का, हरेक से कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है, पर इसका जो समर्पण भाव है कितना श्रेष्ठ समर्पण भाव है। और राजा का दिल छू जाता है, छू जाती है ये बात राजा के दिल को, और राजा उसे माफ कर देता है। और ये भी कहता है कि जो सेवक है और जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं, उनसे भी यदि गलती हो जाए जीवन में तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उनका भाव समर्पण का है, बहुत श्रेष्ठ है। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वदन, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार है। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, अब नया इतिहास लिखना है, अब नया कुछ करना है, ऐसी सेवा कुछ करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की, नया इतिहास रचना है, नया इतिहास लिखना है। बंसी फेंक दो और क्या करो, हाथ में अब तलवार उठाओ। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हार हमारी हो ही नहीं सकती, यह निश्चय हो। बाबा ने कहा सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी सेवा करो यही सोचना है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे कितनी भी कलराठी जमीन क्यों ना हो, कितने भी विरोध करने वाले क्यों ना हो, ऐसी जमीन क्यों ना हो, ऐसा सेंटर, ऐसी जगह जहां पर लोग आते ही नहीं, परंतु ज्ञान का बीज अविनाशी है, यह भूलना नहीं है। कोई अब निकलेगा, कोई बहुत बाद में निकलेगा, पर निकलेगा जरूर एक दिन, क्योंकि ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जिसने एक बार भी ज्ञान सुन लिया वो कई दिनों के बाद, कई समय के बाद, कई अरसे के बाद एक दिन जरूर आएगा। इसके लिए हमारी कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं हो सकती। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा को बच्चे पूछते हैं, बाबा सेवा बहुत की पर रिजल्ट जीरो निकला, बाबा सेवा बहुत की पर रिजल्ट जीरो निकला। तो बाप कहते हैं यदि फल निकलना था इसीलिए तो बच्चों को भेजा ना, ऐसे ही थोड़ी भेज दिया उस जमीन पर, उस जमीन से फल निकलना है एक दिन, इसीलिए तो बच्चों को भेजा, या ऐसे ही भेज दे बाबा। और सीजन का फल सीजन में ही निकलेगा, सीजन का फल सीजन में ही निकलेगा, बेमौसम नहीं निकलेगा, अभी सीजन उसका आया नहीं है तो ही निकलेगा। इसलिए सेवा छोड़नी नहीं है, सेवा करते रहना है। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत का जयकार। भारत की जय जयकार होगी एक दिन, इसीलिए हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
का समय गया, उठो लिखो इतिहास आ। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास आ। फल पी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, गति झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सन्मुख मेहरन पाते हार, मेहरन पाते हार साथियों, हो जाओ
सेवा की विधि बाबा ने बताई है कि जब भाषण करो तो क्या हो, अनुभूति कराओ। प्रत्यक्षता का झंडा तब लहराएगा जब तुम तब जब तुम क्या अनुभव की अथॉरिटी से बोलोगे। तब संसार में भी लोग भाषण करते हैं, पर उनके भाषण में और तुम्हारे भाषण में क्या अंतर है? वो भी हंसाते हैं, वो भी रुलाते हैं, वो भी शांति का अनुभव कराते हैं, परंतु वो सब है अल्पकाल का, टेम्पररी। तुम जब बोलो, तुम जब भाषण करो, तब भी अनुभव कराओ शांति। कहा और शांतिमयी वातावरण हो जाए, आनंद कहा और सारे हॉल में आनंद की लहर फैल जाए। तो ज्ञान सुनाना या भाषण देना, इसमें कौन सी एडिशन चाहिए? अनुभव कराने की। तो क्या हम करें कि जब हम बोले, जब हम ज्ञान सुनाए, जब हम किसी को ज्ञान समझाए, चाहे 7 दिन का कोर्स, चाहे प्रदर्शनी, चाहे कोई म्यूजियम में, चाहे गेस्ट पार्टियां, ग्रुप या बड़ी सभा में भाषण, या बाहर के लोगों के सामने भाषण, उसमें कौन सी एडिशन हो? एक्सपीरियंस। बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनो और बोलो, फिर डर नहीं रहेगा। लास्ट संडे की मुरली में था वर्कशॉप करो, लास्ट संडे की मुरली में था कि अनुभव युक्त भाषण करो, लास्ट संडे की मुरली में था कि अलग अलग टॉपिक्स पर भाषण करो, लास्ट संडे की मुरली में था कि तीर भी लगे और चुभे नहीं, लास्ट संडे की मुरली में था सत्यता की अथॉरिटी हो, सत्यता हो, अथॉरिटी हो, नम्रता हो और रहम दिल, ये चारों चीजें होनी चाहिए। तब उनको लगेगा कि इनमें अभिमान नहीं है, नहीं तो उनको लगेगा इनमें अहंकार है, अपना अपना सुनाते रहते, आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ये आ गए फिर से आत्मा परमात्मा वाले, और जल्दी छोड़ते नहीं है, बच के जाना वहां पर, एक बार चालू कर दिया इन्होंने कि छोड़ते नहीं है। तो अथॉरिटी भी हो, सत्यता भी हो, नम्रता भी हो और रहमदिल भी हो, ये चारों चीजें हो। तीर लगे पर चुभे नहीं, स्पीच करो, स्लोगन पर बोलो, एक एक स्लोगन ले लो कोई भी, उस पर बोलो, स्पीच की नई रूपरेखा हो। ये सब लास्ट संडे की मुरली में था ना, सत्यता की शक्ति, उसमें सारी बातें थी। यहां पर भी बाबा ने बोला है अनुभव युक्त बोलो, उनको अनुभव कराओ, ऐसा बोलो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो तो अनुभव कराने के लिए क्या करना है, कम से कम 8 बातें। जब हम बोले तो अनुभव कराना है, उसके लिए कम से कम 8 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, हमारी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज, हमारी अपनी आत्माभिमानी स्थिति। हम ही देहभान में है तो दूसरों को क्या अनुभव करा पाएंगे। हम देहभान में है और परिचय दे रहे आत्मा का। हम देहभान में है और बातें कर रहे परम धाम की। हम देहभान में है और दूसरों को बता रहे कि तुम देह नहीं हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, और हम खुद अशांत है, खुद बेचैन है, खुद डिस्टर्ब्ड है, खुद अपने हिसाब किताब के बारे में सोच रहे ये कब पूरे होंगे, और दूसरों को परिचय दे रहे कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। सबसे पहली चीज आत्माभिमानी स्थिति। अगर अनुभव कराना है आत्माओं को जिनके सामने हम बोल रहे, चाहे वो ग्रुप है, चाहे विजिटर्स है, चाहे गेस्ट है, चाहे कोर्स वाला कोई है, कोई भी हो, या 5 मिनट के लिए किनसे मिलने जा रहे, कोई इनविटेशन देने जा रहे। इनविटेशन देने जाते हैं ना तो वहां पर एक चीज करनी पड़ती है, वेटिंग, बैठना पड़ता है बाहर, तुरंत अंदर आने नहीं देते। वो बहुत ही उपयुक्त समय है योग का, वहां बैठकर ही आधा काम करना होता है। लाइन में या वेटिंग जब होते हैं, डायरेक्ट अंदर तो आने नहीं, घुसने थोड़ी देते हैं, कोई कहते वहां रुके रहो, टाइम आएगा तो आपको बुलाएंगे। तो वहां बैठकर ही योग की किरणें थोड़ी सी फैलाओ। वो सेवा, मुख्य सेवा तो वहां है वेटिंग में। जितना ज्यादा वेटिंग उतने ज्यादा मार्क्स। सबसे पहला सोल कॉन्शियस स्टेज, सबसे पहला आत्माभिमानी स्थिति में जितने हैं उतने ही सामने वालों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, बाप की याद, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, परमात्मा याद। हम किसकी याद में जा रहे, किसका संदेश देने जा रहे, किसकी सेवा करने जा रहे। मुरली में कहा ना पार्टियों से कि सेवा कर रहे हो परंतु बाप साथ है, वो ऊपर है करण करावरा, हम खेल कर रहे हैं नीचे, तब सफलता मिलेगी, तब जन्मसिद्ध अधिकार होगा सफलता। तो निरंतर उसकी याद, उसकी याद में हम कर रहे हैं। तीसरा, आत्मिक दृष्टि। तीसरा, सोल कॉन्शियस विजन। ये सब कौन है? आत्माएं जिनको हम संदेश दे रहे। बेचारे बाबा को जानते नहीं, बेचारे भगवान से दूर है, कैसे भी करके इनका मिलन हो जाए बाबा से, बस जान ले, पहचान ले, कितने भटक रहे। ये आत्माएं हैं। और चौथा, हमारी भावनाएं, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची, बहुत प्योर इंटेंशन, स्वार्थ भरे ना हो कि ये सहयोगी बन जाए तो बहुत मिल जाएगा, ये सहयोगी बन जाए, ये भाव नहीं है, निस्वार्थ कामनाएं हैं। दुखी हो जाते हैं कि कोर्स हमने कराया, जाता वो सेंटर पर है, उसको इधर आना चाहिए, कोर्स ने किसने कराया, हमने कराया, कमाल है। ऐसे ही हमारे साथ ही क्यों होता है पता नहीं, अच्छे अच्छे को हम निकालते हैं और उधर चले जाते, पता नहीं उधर क्या है, किधर भी जाने दो, हमारा लक्ष्य है वो भगवान के साथ चले, निस्वार्थ भाव हो। जैसे एक चर्च था, उस चर्च में पादरी ने अपना भाषण पूरा किया, नौजवान था, और कहा कि आज हमारे चर्च में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं जो कि बहुत धार्मिक है और जो कि कई सारे चर्चों में पादरी रह चुके हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि वो आज यहां आए हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो भी अपने कुछ 2 शब्द सुनाए। तो वो बूढ़ा पादरी आता है और अपना भाषण चालू करता है, और भाषण देते देते वो एक अपने एक कहानी सुनाता है। कहानी में कहता है कि एक समुद्र में एक जहाज में तीन लोग जा रहे थे, एक पिता, उसका बेटा और बेटे का दूसरा दोस्त। वो छोटे थे, बच्चे थे, और जैसे ही नाव से जा रहे थे ये तीनों लोग, अचानक से तूफान आ गया और पिता ने तो अपने आप को संभाल लिया और उसके हाथ में जो लाइफ लाइन थी, जो एक रस्सी जिससे वो दोनों में से एक को ही बचा सकता था बस, और उसका जो बेटा था उस व्यक्ति का, वो ईसाई था, मतलब धार्मिक था, भगवान को मानने वाला था, और बेटे का जो दोस्त था वो नास्तिक था एकदम, वो नहीं मानता था। अब पिता के हाथ में था किसको बचाए, अपने बेटे को या बेटे के दोस्त को। तो वो पिता अपने बेटे से कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, और वो लाइफ लाइन बेटे के दोस्त के हाथ में दे देता है, और उसको आंखों के सामने उसका बेटा डूब जाता है और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। और ये कहानी जब वो ये पादरी, बूढ़ा पादरी सुना रहा है, तो वो कहता है कि ये कहानी मैंने एक समय सुनी थी, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? बहुत लोग स्तुति करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर उसमें दो युवक होते हैं, नव युवक, वो कहते हैं वी डोंट थिंक दिस इज अ रियलिस्टिक स्टोरी, बिल्कुल गलत है ये, उस पिता ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जो लड़का था दूसरा, ये भरोसे में कि वो जाके भगवान का भक्त बन जाए या उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, अभी वो नास्तिक है, उसको बचाया इसलिए ताकि वो आस्तिक बन जाए, और अपने बेटे को मार दिया, इससे क्या फायदा हुआ? ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविकता नहीं दिखती है इसमें, ये तो थियोरेटिकली बहुत अच्छा है। तो वो बूढ़ा पादरी कहते हैं हां बात तो तुम्हारी राइट है बात तुम्हारी राइट है, पर मैं अब तुमको एक दूसरी बात बताता हूं। वो जो पिता था ना, वो मैं हूं, और ये जो तुम्हारा पादरी है ना ये वो दूसरा दोस्त है, बन गया ना भगवान का, अपने जीवन को अर्पित कर दिया चर्च के लिए, भगवान के लिए। तो इंटेंशंस बहुत प्योर हो, हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध हो, तो ही हम अनुभव करा सकेंगे। अगर पहले से ही पता है 10 VIP आए हैं, अगर इनमें से कोई फंस जाए तो बहुत फायदा है इस भाव से गए और फिर भाषण चालू किया और उनको थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो, थोड़ी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उनकी तरफ, बार बार उनकी तरफ मुड़ के देख रहे, पता ही है थोड़ा सा VIP है, सब समान। तो सबसे पहले आत्म अभिमान स्थिति, हम खुद आत्मा समझ के बैठे हुए, दूसरा परमात्मा की याद, तीसरा आत्मिक दृष्टि, ये सब आत्माएं हैं, बिछड़ी हुई है, हमको इनसे, इनको बाबा से मिलाना है, भगवान से इनका मिलन कराना है, और बहुत शुद्ध भावनाएं, रहम की भावनाएं। तो ये चार बातें भाषण के समय अनुभव कराने के लिए, पांचवा बीच बीच में कमेंट्री करानी है। किसी को कोर्स कराना है तो सीधा कोर्स करा के आधे घंटे में पूरा, ये आत्मा है, आत्मा ब्रुकुटी के मध्य बैठती है, ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, वो कहता है एक प्रश्न बाद में, प्रश्न पहले सुन लो, प्रश्न विष्णु सब बाद में, बोल दिया ना आत्मा के अंदर है तीन चीज, मन बुद्धि संस्कार। वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो भक्ति में सुना था कि मन बुद्धि और उसके परे आत्मा है, वो कहता है सब हटाओ, भक्ति की बात है, हम जो सुना रहे अब सुनो। वो पूछता है ये सब कॉन्शियस माइंड का है, वो कहते सब कॉन्शियस ऐसा कुछ नहीं, पहले सुनो, बोला ना मन बुद्धि संस्कार, बस ये तीन शक्तियां है, भ्रुकुटी के मध्य में है अजब सितारा चमकता हुआ, और ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है, ये चला रहा है इसको, आगे बाद में कोर्स पूरा होने के बाद में पूछना, अभी नेक्स्ट चैप्टर। बीच बीच में कॉमेंट्री हो, किस चीज की कॉमेंट्री? आत्मा की कॉमेंट्री। सोल कॉन्शियसनेस की कमेंट्री पहला, पांचवा आत्म अभिमानी की कमेंट्री, उसको आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना है बैठे बैठे, भले वो सामने ना देखे उसको आंखें बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, और उसको वही कमेंट्री कराना है कोर्स कराते कराते, ये पांचवा। छठवा परमात्मा अभिमानी स्थिति की कमेंट्री करानी है कि भगवान से मेरा क्या तुम्हारा क्या संबंध है, शिव बाबा की कमेंट्री करानी है, वो ऊपर उसकी किरणें आ रही है और आत्मा में भर रही है, ये बीच बीच में कमेंट्री करानी, चाहे बड़ी सभा हो चाहे छोटी सभा हो, चाहे ओम शांति भवन में ही समझाने क्यों ना समझा रहे हो, समझा दिया समझा के छोड़ नहीं देना है, बोलना भी दो मिनट के लिए सब आंखें बंद करके बैठ जाओ, खड़े खड़े भी कॉमेंट्री करा सकते हैं, खड़े खड़े भी हो सकती है कॉमेंट्री, तो कैसे भी हो सकती है, है तो आत्मा ही ना। उसके बाद में सातवा स्व से बातें करने की कॉमेंट्री, स्व से रूरियान सेल्फ टॉक, उनको बोलो अब अपने आप से बातें, हम कॉमेंट्री कराए वो सुने, और स्व से कॉमेंट्री कैसे होती है, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, जीवन मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक कॉमेंट्री, स्व से रू रिहान। तो ये तीन प्रकार की अलग अलग कॉमेंट्री करानी है जिससे आत्माओं को अनुभव होगा, किसका अनुभूति, बाबा ने कहा अनुभूति कराओ अशरीरीपन का, वो लोग हंसाते हैं रुलाते हैं टेम्पररी शांति में ले जाते हैं, क्या तुम नहीं कर सकते, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुमको तो करना ही चाहिए, अनुभूति कराओ। और लास्ट आठवां अपना ही कोई अनुभव सुनाओ उनको, अपने अनुभव से ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्या अनुभव सुनाएंगे, हम पैसे बिगड़े हुए थे, क्या क्या पीते थे पता नहीं, कितने व्यसनी थे, और क्या बताएंगे उनको, गुटखा तंबाकू ये सब व्यसन थे, हमें सब छूट गया यहां आने के बाद, क्या फैशनेबल थे हम, वो भाई ने सुनाया था ना बड़े बड़े बाल इधर टैटू इधर टैटू, और वो बाइक और जेब में गुटखा तंबाकू चरस गांजा सब कुछ सिगरेट, बड़े बड़े बाल गुंडे जैसे थे भाई जी, एक भाई जी ने यहां अनुभव सुनाया था, फोटो भी दिखाया था उसके पुराने जीवन पूर्व जन्म का, और कैसे छुड़ा दिया बाबा ने सब उसको, नहीं तो ड्रग छूटते हैं क्या, वो कहता था मेरे ए जेब में गांजा इधर तंबाकू सब चरस गांजा एक भी नहीं था, इतना अमीर थे घर के कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो नहीं ला सकते थे, पूरा जेब भरा रहता था, रात सोने का समय सुबह 6 बजे का था, बाइक से अपने वो दोस्त गुंडे उनके साथ घूमते रहते थे, और कैसे बाबा ने टच कर दिया, आज इतना अनन्य भाई है वो, सब सेवा ऑलराउंडर सेवा चालू है सेंटरों पर, और पहले ये था लोगों को डी एडिक्शन के लिए 6-6 महीने रुकते हैं पुनर्वसन केंद्र में, फिर भी छूटता नहीं, उसका तो छूट गया, और कोई विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं, वो तलब भी नहीं होती है पीने की, इच्छा नहीं होती है, उसने अनुभव सुनाया था कि वो ब्रह्मा कुमारी बहन सेंटर पर घर पर आई, और फिर कैसे उसने थोड़ी सी बातें की और रात भर रोता रहा, रात भर तकिया में जागता रहा, सोचता रहा ये क्या है ये क्या हो रहा है, और फिर संकल्प किया सुबह, जेब में चरस है पूरा भरा, पर उसने संकल्प किया आज सारे दिन भर इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, पर जेब में ही रखूंगा पर हाथ नहीं लगाऊंगा, इधर ही रहेगा पर हाथ नहीं लगाऊंगा, और दूसरे दिन फिर पूरा कितना सारा जमा किया और सब जला दिया, जो छूट गया सो छूट गया, अनुभव अपने जीवन का अनुभव, कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान ने मदद की, कठिन परिस्थिति में थे और कैसे बाबा ने अचानक से मदद कर दी, ये अनुभव सुनाएंगे ना तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अपना मतलब अपना अनुभव अपने जीवन में, मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं ऐसा था और यहां ये बन गया। एक भाई का अनुभव है, वो उसको प्रदर्शनी की बुक डस्टबिन में मिली, प्रदर्शनी की फटी पुरानी किताब डस्टबिन में, वो देखा और उसको लगा अच्छा आत्मा परमात्मा, फिर लोगों से पूछा ये कहां है ये किसका है, और किसी ने कहा अरे ये तो शायद ब्रह्मा कुमारियों का है, वहां गया, वहां कोर्स कराया, फिर इधर आ गए। तो अनुभव युक्त स्व अनुभव की बातें बतानी है लोगों को तो अनुभव होगा। तो ऐसी ये आठ चीजें हैं, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा की याद में बोलना है, आत्मिक दृष्टि हो, बहुत शुद्ध हमारी मंशा हो, हमारी इंटेंशन बहुत शुद्ध हो, उसके बाद में कमेंट्री करानी है बीच बीच में, पांच मिनट का ही समय है उसमें, जैसे हमको याद है एक जगह पर 7 मिनट टाइम था बोलने का, पूना में ये थी टोटल नहीं, हाँ 10 मिनट टाइम था, अब 10 मिनट में बोलना है, और वो इतना जोर से बजर बजता था 10 मिनट के बाद, बाप रे बाप, बहुत मतलब रुकना ही है, 10 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं सकते, और टॉपिक था बहुत बड़ा बड़ा के बड़ा, धर्म के रिलेटेड, धर्म से संबंधित, केवल 10 मिनट में। तो हमने ये सोचा था कि 7 ही मिनट बोलेंगे अब और 3 मिनट कॉमेंट्री, तो 3 मिनट की कॉमेंट्री वो 5 मिनट तक चली, पर कॉमेंट्री में इतना शांति हो गई कि बजर बजाने वाला कान में आके बोला भाई जी बंद करो क्योंकि इतने जोर से इतनी शांति में बजर कैसे बजाएगा, तो बहुत इतना भयंकर बजर था कि वो जब बजता था तो पूरे लोग जो सोए हुए वो भी उठ जाते थे नहीं बजर बजाए नहीं, उसको लगा कि इतनी मौन और इतनी शांति में बजर कैसे बजाऊं, तो चुपचाप कान में आके बोला। तब वैसे तब तक हम पूरा कर ही चुके थे, पर कमेंट्री तो ऐसी है, कहीं पे भी रोक सकते हैं, कहीं पे भी रोकी जा सकती है, कमेंट्री तो ऐसी चीज है ना हमारी, राजयोग की कमेंट्री, कहीं पे भी रोक दो लोगों को क्या पता हम आगे क्या बोलने वाले, तो वहां रोक दिया उसको। तो ये विदेशियों से मुलाकात की, बच गया बजर, फिर दादी से बात की जो हमने बता दिया, दादी को क्या कहा, बहुत होशियार हो और बाबा ने ढीला ढाला नहीं छोड़ा है, सीखी हुई जो सीखा है वो सिखा रहे हो, और बाप इस समय साक्षी भी है और साथी भी है, साकार में वो क्या है, साथी है कि साक्षी, साकार में साक्षी है और अव्यक्त में साथी है, अव्यक्त में तो साथी का साथ भी और साक्षी का साक्षी भी, ऐसे शब्द आए ना। तो दादी से भी बात की बाबा ने और सेवाओं की बात की, तो क्या होना है, फिर से हो जाओ तैयार साथियों, ये हाथों में बंसी छोड़ो और क्या करना है, तलवार, कौन सी तलवार उठाएंगे, बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, ये यज्ञ बलिदान मांग रहा है, किसका बलिदान, तन का मन का धन का, इस यज्ञ को हमारे यौवन की आवश्यकता है, हमारे तन की आवश्यकता है, हमारे मन की आवश्यकता है, हमारे धन की आवश्यकता है, बलिदान मांग रहा है ये यज्ञ, और जो करेंगे बहुत ऊंच पद पाएंगे, भगवान के दिल पर बैठ जाएंगे, जिसने इतना सा भी दिया होगा उसको भगवान छप्पर फाड़ के दे देगा, जिसने थोड़ा भी दिया होगा, काप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत का जय जयकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ओम शांति।
बेकार साथी।
उठो लिखो इतिहास सोचने का समय गया उठो लिखो इतिहास बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार हाथों में तलवार साथियों हो जाओ गति झुके नहीं शीश कटे पर झुके नहीं